तो आप लोग निकाल लीजिए अपने मार्कर कुरान या कोई तर्जुमे वाली किताब हो तो उसको आप खोल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح سورة النازعات ہم نے آج شروع کری ہے یہ مکی سورت ہے یعنی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئی تو اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں شروع میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا کہ قسم ہے گھسیٹ کر کھینچنے والے غوطہ لگا کر ایک منٹ کھولی تو قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر واو قسمیہ جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے واللہ کے ساتھ اللہ کی قسم مراد ہوتا ہے تو النازعات کیا لفظ ہے یہ نازعتن کی جمع ہے نازعتن کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والی کھینچنے والی تو یعنی نزع کا وقت آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی انسان کے اوپر موت کا وقت آخری وقت آتا ہے تو اس کو حالت نزع کہتے ہیں کیوں اس کو حالت نزع کہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کی روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے نزع کا وقت ہوتا ہے وہ تو کھینچے جانے کا وقت تو نازعن کھینچنے والا نازعتن کھینچنے والی اور اس کی جمع نازعاتن ٹھیک ہے تو واو قسمیہ جب لگا دیا تو نازعاتن نازعاتن ہو گیا کیونکہ واو قسمیہ حالت جر میں ڈال دیتا ہے پھر الف لام بھی لگا دیا تو تن جو ہے وہ صرف تی میں رہ گیا یعنی تنوین گر گئی اور صرف ایک زیر رہ گیا تو ون نازعاتی غرقن غرق کر کے غرق ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پورے سب مرج ہو جاتے ہیں यानी आप पानी के अंदर ना पूरे गायब हो जाते हैं, ठीक है, या किसी भी लिक्विड चीज के अंदर आप गायब हो जाते हैं, तो उसको गर्क होना कहते हैं। तो ये भी इसी तरीके से गर्क होते हैं, यानी गोता लगाते हैं इंसान के वजूद में, के इंसान की रूह को खींचे, या ये कि ये जो ऊपर से आते हैं, आसमान से आते हैं मौत वाले फरिश्ते, ठीक है, तो ये ऊपर से गोता लगा करके नीचे पहुंचते हैं और इंसान की रूह को खींचना शुरू करते हैं। तो वन्नाज या गर्कन, अल्लाह ताला इन फरिश्तों की कसम खा रहे हैं, मौत के फरिश्ते। तो मौत के फरिश्ते, अब तो हम अब तक तो समझते थे कि एक ही हैं, हजरत इज़राइल अलैहि सलाम, राइट, लेकिन इज़राइल अलैहि सलाम जो है वो टीम लीडर है, मैनेजर है, और इनके नीचे पूरी एक टीम है। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, यानी ये एक नहीं है बल्कि पूरी एक टीम है। इज़राइल अलैहि सलाम जो है वो मैनेज करते हैं इस टीम को, वो टीम जो है वो अपना काम करती है। वन नाशितात नश्तन, तो नाशितात और बंद छुड़ा देने वालों की खोल कर, ठीक बंद छुड़ा देने वाले, बंद का मतलब होता है गिरा, ठीक है, गिरा को खोल देना, यही मुराद है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं उन फरिश्तों की जो कि गिरह को खोल देते हैं, गिरह को खोलना, नश्तन का मतलब वही गिरह खोलना, ठीक है। तो नश्तन जो है वो रूट वर्ड हुआ, ठीक है, जिसको मस्दर कहते हैं, जिसका मतलब होता है गिरह खोलना, नाशितुन गिरह खोलने वाला, नाशितुन फाइलुन के वजन पर, ठीक है, गिरह खोलने वाला, और नाशितातुन गिरह खोलने वाली, क्योंकि जब ताए मरबूता आखिर में लगा देते हैं तो लफ्ज मुअन्नस बन जाता है, तो गिरह खोलने वाली नाशितातुन, और इसकी जमा क्या होती है, नाशितातुन, ठीक है, नाशितातुन, ये इसकी जमा हो गई। तो गिरह खोलने वालियां फरिश्तों के लिए मुअन्नस का सीगा, मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी वजह से अरबों को जो शैतान ने मुगालता लगा दिया था वो क्या था कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, ठीक है, बेटे नहीं कहते थे, अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, इसलिए कि अरबी जुबान में फरिश्तों के लिए मोनस का सीगा इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ कुरान ने भी मोनस का ही सीगा इस्तेमाल किया। तो वह नाशपात नश्तन गिरा खोलने, लेकिन हम उर्दू में तो फरिश्तों को मुजक्कर कहते हैं, इस वजह से तर्जुमे में मुजक्कर कहेंगे, गिरा खोलने वाले, ठीक है। अच्छा, ये गिरा खुलने वाले तो नाशितात का तर्जुमा हो गया, नश्तन का तर्जुमा गिरा खोलना, लेकिन उर्दू में हम इस तरह से बात नहीं करते कि गिरा खोलने वाले की कसम गिरा खोलना, ये उर्दू का मुहावरा नहीं है, ये अरबी का मुहावरा है। तो अरबी में इसका मतलब क्या होता है, अरबी में जो ये नश्तन इस्तेमाल किया ना, तो ये जो है वो यानी ये मसदर है, मसदर जो है वो लेकर के आते हैं कि उसका एक मकसद ये होता है कि बात में ताकीद पैदा हो जाए, ठीक है, और एक मकसद उसका ये भी होता है कि प्रोसेस को डिफाइन कर देते हैं, कि ये जो प्रोसेस है ना जो ये लोग करते हैं, जैसे नाशितात कौन होते हैं, गिरा खोलने वाले, तो उनकी कसम की जा रही है, लेकिन ये जो कसम खाई जा रही है ना उनकी, तो ये कसम उस वक्त की खाई जा रही है जब वो गिरा खोलने का काम करते हैं, इसलिए कि गिरा खोलने वाला जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त गिरा खोलता रहे, ठीक है भाई, जब उसको काम असाइन हुआ है तब वो जाकर के गिरा खोलेगा ना, कि किसी की जाकर के जरा गिरा खोलो, तो अब वो गिरा खोल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि कारपेंटर होता है, अब कारपेंटर को कहते हैं बढ़ई का काम करने वाला, ठीक है, लेकिन वो हर वक्त बैठ करके भड़े का काम तो नहीं कर रहा होता ना, कभी वो खाना भी खा रहा होता है, कभी पानी पी रहा होता है, कभी अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार रहा होता है, ठीक है। तो गोया कि बढ़ई की, जब वो बढ़ई का काम कर रहा हो, जब वो कारपेंटरी का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसी तरीके से नाशितात की कसम खाई जब वो गिरा खोलने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो ये दो किस्म के फरिश्ते हैं, नाजियात एंड नाशितात। अब ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अल्लाह ताला ने अलग अलग बयान किया है, और इसकी रीजन जो है वो तफसीर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वस्साबिहाति सबहन, और तैरने वाले, तैरने का मतलब तैरना, तैरना भी कुछ लोग कहते हैं और तैरना भी लोग कहते हैं। तो तैरने वालों की जो तेजी के साथ तैरते हैं, ठीक है, ये इसका तर्जुमा हो गया बा मुहावरा उर्दू जुबान में। लफ्ज है साबिहात, ये भी उसी तरीके से जैसे पिछले दो अल्फाज थे, लफ्ज असल में है सबह, सबह का मतलब होता है तैरना, यह है मस्दर, ठीक है। अब तैरने वाले को क्या कहते हैं, साबिहुन, ठीक है, जैसे वर्ब का मतलब होता है मारना, और मारने वाले को क्या कहते हैं, वारिबुन, तो उसी तरीके से साबिहुन तैरने वाले को कहते हैं, और तैरने वाली को कहेंगे साबिहतुन, और उसकी जमा साबिहातुन, ठीक, जैसे मुस्लिमुन होता है ना, मुस्लिमुन इस्लाम लाने वाला, मुस्लिमतुन इस्लाम लाने वाली, और इस्लाम लाने वालियों को क्या कहते हैं, मुस्लिमातुन, ठीक है, ये एक कॉमन वर्ड है जो कि आपको शायद आसानी से याद रहे, तो ये सब मुस्लिमातुन के बदन पर हैं ये अल्फाज, नाजआतुन, नाशतातुन, साबिहातुन, ठीक है। तो तैरने वालों की कसम खाई, जबकि वो तैर करके आते हैं। अब ये तैर करके आने का क्या मतलब, ये जो फरिश्ते जो जो जिस जिस अंदाज में उतरते हैं ना, ये ऐसे है कि गोया के वो फिजा में तैर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी गौता लगाने का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, गोया के जो दुनिया की फिजा है ना, ये उनके लिए पानी की मानिंद है, जैसे कि पानी में इंसान तैरता है ना, तो ये हवा में तैरते हैं, ठीक है, बाकायदा गोया के ग्लाइड करते हुए आ रहे होते हैं या तैरते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। तो तैरने वालों की जो कि तेजी से तैरते हैं, ये तो बा मुहावरा तर्जुमे में लिख दिया। वैसे सबहन का मतलब होता है तैरना, सबह का मतलब होता है तैरना। फसाबिकाते सबकन, और आगे बढ़ जाने वाले दौड़कर, ठीक है, तो ये भी वही सिलसिला चल रहा है जैसे पहले था, कि सबक सबकन का मतलब होता है यानी आगे बढ़ जाना, जिसको कहते हैं मुसाबिकत करना, ठीक है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, तो उसको कहते हैं सबकन, ठीक है, मुसाबिकत का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अगरचे कि हम उर्दू में उमूमन ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मुसाबिकत का लफ्ज यही होता है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक अच्छे अंदाज में कोशिश करना, एक होता है मुकाबला करना, मुकाबला करने में भी आप एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुकाबला जो है ना वो लड़ाई के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, वो जरा उसमें दुश्मनी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, उसके अंदर एक नफरत का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, मारपीट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है मुकाबले में, ठीक है, लेकिन मुसाबिका, मुसाबिके के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव मीनिंग है, तो इसी वजह से सऊदी अरब में जब ये हिफ्स का मुकाबला करवाते हैं ना, हिफ्स का मुकाबला, तो हमारे यहाँ उसको मुकाबले हिफ्स कहते हैं या मुकाबले करत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको मुकाबले का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ज्यादा मुनासिब लफ्ज मुसाबिका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे से सबकत लेने की बच्चे कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पहल करना, पहल करने वाला, सबकत करने वाला, तो सबकत करने का लफ्ज उर्दू में भी कहते हैं ना, तो साबिकुन सबकत करने वाला, साबिकतुन सबकत करने वाली, और साबिकातुन सबकत करने वालियां, ठीक है। तो ये जो फरिश्ते होते हैं, ये एक दूसरे से सबकत भी कर रहे होते हैं, आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरी टीम आ रही होती है ये काम करने के लिए, दो तीन चार न जाने कितने आते हैं, बल्कि बहुत सारे भी आते हैं, ठीक है, यह हदीस मुबारका में इसकी तफसीलात आई हैं, जान निकालने के लिए फरिश्ते जो आते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में भी आते हैं। फल मुदब्बिरात अमरन, फिर काम बनाने वालों की हुक्म से, ये तो इसका बा मुहावरा मारफुल कुरान में तर्जमा लिखा हुआ है, तो ये लोग जो हैं, अच्छा कसम तो है वो तो खत्म हो गई तीसरी आयत में, क्योंकि वाव कसमिया वहां पे मुकम्मल हो गया, अब उसके बाद ना उसी की कंटिन्यूएशन है फा के साथ, कि वो लोग जो तैरते हुए आते हैं ना, तो फिर वो सबकत भी करते हैं और फिर वो तदबीरें भी करते हैं काम की, अमर कहते हैं काम को, ठीक है, तो तदबीरें करने वाले, मुदब्बिरुन मुदब्बिर तदबीर करने वाला, ठीक है, मुदब्बिर, दब्बरा युदब्बिरो तदबीरन, दब्बरा युदब्बिरो तदबीरन, तो तदबीर करने वाला, उसको क्या कहेंगे, मुदब्बिर, फहुआ मुदब्बिरुन। ठीक है, जिन लोगों को अगर सर्रफा युसर्रिफू की गर्दान याद की है तो उसमें क्या होता है, सर्रफा युसर्रिफू तस्रीफन फहुआ मुसर्रिफुन, उसी तरीके से मुदब्बिरुन, तदबीर करने वाला, मुदब्बिरतुन तदबीर करने वाली, और मुदब्बिरातुन तदबीर करने वालियां, यानी ये फरिश्ते तदबीर भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं कि हमने, हमें जो काम असाइन हुआ है कि फलाने शख्स की जाकर के जान निकालो या कोई और काम करो, तो उसकी बाकायदा प्लानिंग के साथ आते हैं। ठीक है ना, यानी सोच विचार करते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं। ठीक है ना, ये जो डिस्कशंस होती है ना फरिश्तों के आपस में, यही वो डिस्कशंस हैं जो कि जिन्नात कान लगा करके सुन लिया करते थे। ठीक है, तो ये आपस में डिस्कशंस करते हैं, तदबीर करने के लिए तो डिस्कशन करनी पड़ती है ना, मीटिंग करनी पड़ती है ना तदबीर करने के लिए, प्लानिंग मीटिंग्स होती हैं हमारी भी। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन कांपे कांपने वाली, तो यौमा दिन को कहते हैं और इस दिन के बारे में फरमा रहे हैं तरजुफुर राजिफा, तो इस वजह से इसका तर्जुमा करते हैं जिस दिन तरजुफुर राजिफा। तो तरजुफु का मतलब फिर क्या हुआ, रजिफा यरजफू या रजफा यरजुफू, नसर यंसुर बाप से है, हाँ रजफा यरजुफू, तो उसको गर्दान में चलाएं तो यरजुफू जो है वो तरजुफू आएगा, तरजुफू बनेगा, वाहिद मोहन्नस गायब का सीगा। तो तरजुफू का मतलब होता है यानी वो लरसती है, वो लर्जी। ठीक है, तरजुफू कौन लर्जी, राजिफा। ठीक है, राजिफतुन लरजने वाली, कांपने वाली। ठीक है, तो ये भी इसम फाइल का सीगा है लेकिन मुअन्नस वाला, वाहिद मुदक वाहिद मुअन्नस इसम फाइल राजिफतुन। ठीक है, लरजने वाली, तो जिस दिन लरजने वाली लरजेगी। ठीक है, यौम तरजुफ राजिफा, जिस दिन लरजने वाली लरजेगी या कांपने वाली कांपेगी। तत्बउहर रादिफा, यानी कयामत के जलजले की बात हो रही है कि जिस जब हर चीज जो है वो कांपना शुरू हो जाएगी, लरजना शुरू हो जाएगी। तत्बउहर रादिफतु, उसके पीछे आए दूसरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तत्बउहा अर रादिफतु, तो पहला जो लफ्ज है तत्बउहा, तो ये इत्तिबा का मतलब समझते हैं ना, इत्तिबा का लफ्ज तो हम वाकिफ हैं उससे, इत्तिबा का मतलब होता है पीछे पीछे आना, पीछे पीछे चलना। ठीक है, तो इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबाअन। ठीक है, इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबाअन, इत्तिबाअन मसदर हो गया। ठीक है, तो इत्तिबा का मतलब होता है पीछे पीछे आना, तो यत्तबिउ का मतलब होता है कि वो पीछे पीछे आता है या वो पीछे पीछे आएगा। ठीक है, तो ये वही मुजारे का सीगा है यत्बउ। ठीक है, यत्बउ बल्कि यत्तबिउ, यत्तबिउ सॉरी, यत्बउ नहीं यत्तबिउ। तो यत्तबिउ को गर्दान में चलाएं तो तत्तबिउ हो जाता है। तो तत्बउहा का मतलब कि फॉलो करेगी उसको, इत्तबा करेगी उसकी, क्या चीज, अर रादिफतु। ठीक है, तो रादिफा इत्तबा करेगी उसकी, यानी कांपने वाला जो जो मामला है ना, उस कांपने वाले मामले के बाद जो है वो रादिफा वो आए वो होगा, रादिफा वाला मामला होगा कांपने के बाद। अब रादिफा है क्या, तो ये दूसरी दफा जो सूर फूका जाएगा रादिफा से वो मुराद है। ठीक है, वैसे लफ्ज रादिफा का मतलब होता है पीछे आने वाला, ओके पीछे आने वाली बल्कि। ठीक है, अब पीछे आने वाली चीज है क्या जो कि कयामत के जलजले के बाद पीछे आएगी, यानी उसके बाद वो होगी, वो है नफ़खे सानिया, दूसरी सूर। इसलिए कि कयामत का जलजला शुरू कब होगा, जब पहली सूर फूकी जाएगी, पहली सूर फूकने से सब कुछ हिलना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, सारा का सारा निजाम जो है वो टूट फूट के दरहम बरहम हो जाएगा और सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत लंबी एक खामोशी होगी जिसमें कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भी मौत दे देंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत दे देंगे, राइट, और आखिर में इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत दे देंगे, ठीक है। यानी मौत का फरिश्ता खुद मर जाएगा और फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात रह जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे और इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा से सूर फूंकने का हुक्म देंगे, ठीक है। ये जो दोबारा सूर फूंका जाएगा ना, अब जो है वो सारा सिलसिला शुरू होगा, ठीक है। तो रादिफा से यहां पर वो मुराद है, अगरचे के रादिफा का लफ्जी मतलब है पीछे आने वाला, ठीक है। तब्बोहर रादिफा, तो पीछे आएगी उसके रादिफा। कुलूबुई यौम इज़िन वाजिफा, कल्ब यानी दिल जिस दिन धड़कते होंगे, ठीक है। तो कुलूब जो है वो कल्ब की जमा है, कुलूब कल्ब की जमा है, और कल्ब का मतलब क्या होता है, कल्बुन, अगर आप बतौर इस्म के लिए ना, कल्बुन, कल्बुन का मतलब होता है उलटना पुलटना, उलटना पुलटना, ठीक है। तो जो हमारा दिल है उसको कल्ब भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो उलटता पुलटता रहता है लोटे की तरह, जिस तरह लोटा है ना, हमारे सियासतदान उनको पुराने जमाने में लोटा कहा करते थे, अब तो ये टर्म भी शायद खत्म हो गया है, इतना आम हो गया है ये तो। खैर, वो लोटा का मतलब क्या होता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में कभी चौथी पार्टी में, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा कल्ब, कभी हमारा कल्ब भी सियासतदान ही होता है ना शुरू में, तो इस कल्ब को जो है वो हमें सख्त बनाना होता है, यानी साबित कदम बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी लगाई है अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो कल्ब का मतलब होता है उलटना पुलटना, तो कुलूब जो है वो उलटने पुलटने वाली चीज को कहते हैं। अच्छा, यौम इज़न जिस दिन या उस दिन, यौम प्लस इज़ का मतलब होता है जब, तो जिस दिन, ये बा मुहावरा तर्जुमा है इसका, इस दिन या जिस दिन बनता है। और वाजिफतुन, वाजिफतुन का मतलब होता है धड़कने वाली, तो वजफा यौजिफू, दरबा यद्रिबू के वजन पर वजफा यौजिफू इसका इसका बाप बनता है। और वाजिफुन उलटने पुलटने वाला, ताए मरबूता आखिर में लगा दें तो वाजिफतुन उलटने पुलटने वाली, ठीक है। यहां पर मुराद क्या है, वाजिफतुन का मतलब यहां पर है धड़कना, ठीक है। यानी कुलूब उस दिन जो है ना, बहुत जो जब कोई बहुत ज्यादा इंसान को डर लगा होता है, खौफ लगा होता है, तो कल्ब ऐसे धड़कना शुरू हो जाता है कि बकायदा सीने के अंदर उसका एहसास होना शुरू हो जाता है, फील होना शुरू हो जाता है उसका धड़कना। तो उस दिन भी इसी तरीके से बहुत जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाएंगे दिल। अब सौरुहा खाशिया के उनकी आंखें झुक रही हैं, अबसार यानी बसर की जमा है, बसर जो है वो देखने की कुव्वत को कहते हैं या आंख को कहते हैं, बसर उसकी जमा है अबसार यानी आंखें। तो आंखें उसकी अबसारुहा, अब ये हा जो है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, गालिबन हा की जो जो जमीर है वो नुफूस की तरफ ही पॉइंट करी है, इंसानों के जो नफ्स होंगे ना, तो उनकी आंखें, ठीक है। अब सौरुहा तो उनकी आंखें कैसी होंगी, खाशियातुन, खाशियातुन का मतलब होता है झुकने वाली, आजजी करने वाली, ठीक है। यानी झुकी भी होंगी क्योंकि जब इंसान अच्छे मूड में होता है या तकब्बुर की हालत में होता है या यानी उसको कोई खौफ नहीं होता, तो उस वक्त उसकी आंखें उठी हुई होती हैं, लेकिन जिस वक्त उसके ऊपर खौफ और दहशत तारी हुई होती है या नदामत तारी हुई होती है तो उसकी आंखें उस वक्त झुक जाती हैं, तो कयामत के दिन भी उसकी आंखें जो है वो झुकी हुई होंगी। ओवरऑल इंसानियत की बात हो रही है यहाँ पर। यकूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, लोग कहते हैं कि क्या हम फिर आएंगे उल्टे पांव, तो यकूलूना काला यकूलू, यकूलू वो कहते हैं, और इसकी जमा क्या होती है, यकूलूना, यानी वो सब के सब मर्द कहते हैं। यहाँ पर मुराद है कि सारे इंसान कहते हैं, यकूलूना वो सब के सब कहते हैं। अ इन्ना, ये जो अ है ये सिर्फ हमजा इस्तिफहामिया है, ठीक है, जो के सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अ का तर्जुमा सिर्फ क्या से करेंगे, इन्ना बेशक हम, ठीक है। तो इन्ना का मतलब होता है बेशक, और नून अलिफ का मतलब होता है हम, यानी नून अलिफ जमीर होती है मुतकल्लिम की, जमा मुतकल्लिम की। तो इन्ना और ना को जोड़ करके ना इन्ना पढ़ते हैं, बेशक हम। ला मर्दूदूना, ला ये तो ला में ताकीद है, ठीक है, ताकीद के लिए जो लाम लाया जाता है वो है ये। उसके बाद लफ्ज है मर्दूद, ठीक है। मर्दूद का मतलब क्या होता है, जिसको के रद्द कर दिया गया हो, और रद्द करने का मतलब क्या होता है कि वो जहां से आया था ना उसको उधर ही लौटा दिया गया, यही रद्द करने का मतलब होता है। कबूल ना किया गया, कबूल करने का मतलब होता है अपने पास बिठा लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है, अपने घर में उसको आपने कबूल कर लिया। और रद्द करने का मतलब होता है कि उसको वापस भेज दिया कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वी डोंट एक्सेप्ट यू, गो बैक, ठीक है। तो रद्द करने का ये मतलब होता है। तो मर्दूद कौन होता है, जिसको रद्द कर दिया गया हो, इससे मफूल का सीगा है। तो मर्दूद की जमा मर्दूदूना, मर्दूदून, ठीक है, जैसे मफूल होता है तो उसकी जमा क्या होती है, मफूलून, ठीक है, मफूलूना, उसी तरह मर्दूदूना, इससे मफूल जमा मुजक्कर। फिल हाफिरा, फी का मतलब तो मे से मे होता है, हर्फ जर होता है, और अल हाफिरतु, हाफिरतुन का जो लफ्ज है ये गढ़ा, गढ़े के मानी में आता है गढ़ा, ठीक है, या गढ़ा खोदना के मानी में वैसे किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मुराद इसमें यहाँ पर यह है कि जो पहली हालत होती है, ठीक है, पहली हालत जो होती है तो उसी की तरफ रद्द कर दिए जाएंगे। हाँ, शैतान को मर्दूद इसी वजह से कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ वो कबूल ना हुआ और उसको रद्द कर दिया अल्लाह ताला ने। तो पहली हालत में क्या हम लौटाए जाएंगे, ये लोग कहते हैं कि क्या हम पहली हालत में लौटाए जाएंगे, यानी कयामत के दिन हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और हम जैसे थे इस दुनिया के अंदर हम उसी हालत में लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये अब दुनिया वालों की बात हो रही है कि ये दुनिया वाले ऐसी बातें करते हैं। तो कयामत का जो अहवाल था ना वो अभी खत्म हो गया और अब दुनिया वालों की बात हो रही है, यानी काफिरों की दुनिया में जो है। और कहते हैं अइज़ा कुन्ना इवामन नखिरा, कि क्या जब हम हो चुके हैं हड्डियां खोखरी या खोखली। यहां पर भी हमजा इस्तेफामिया है, सवाल करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, और इसका तर्जुमा क्या से करते हैं। इदा का मतलब है जब, कुन्ना ये लफ्ज कुन है और नून अलिफ की जमीर इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, तो कुन्ना जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। तो कुन का मतलब होता है हो जाना, और ना की जमीर जोड़ दी तो हम हो गए, ठीक है, हम हो गए। इवामन, इवामन जो है वो जमा है, ठीक है, अजम की, अजमुन या अजम, अजम होता है हड्डी को कहते हैं, और इजाम हड्डियों या हड्डियां, ठीक है। और नखिरा का मतलब होता है बोसीदा, यानी टूट फूट करके रेजा रेजा हो करके बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। तो जब हड्डियां जो है वो बोसीदा हो जाती हैं तो उनके अंदर का जो कैल्शियम वगैरह होता है वो जो है वो यानी डिजोल्व हो जाता है मिट्टी के साथ, ठीक है। तो फिर वो हड्डियां अपने असल हालत में नहीं रह पाती हैं और वो बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर बन जाती हैं, और पाउडर बन करके इवेंचुअली वो मिट्टी के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। तो नखिरा से उस कैफियत को बयान किया गया है हड्डियों की। तो कहते हैं ये लोग कि जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, ठीक कालू तिलका इदन कर्रतुन खासिरा, कालू वो कहते हैं या उन्होंने कहा, ठीक है, लफ्जी तर्जुमा उन्होंने कहा, कालू तिल का इदन कर्रतुल खासिरा। तो तिलका का ये जो है इसम इशारा होता है जिसका तर्जुमा हम यह से करते हैं, ठीक है, जैसे हाजा होता है ना, तो उसी तरह से हाज ही होता है, उसी तरीके से तिलका होता है हाजा की तरह, लेकिन ये बईद के लिए इस्तेमाल है, यानी दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए तिलका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिस तरह हाजा हम किसी करीब की चीज की तरफ इशारा करने के लिए कहते हैं ना, हाजा हाजा किताबुन, ठीक है, तो तिलका जो है वो किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये इसम इशारा है तिलका। तो इसका तर्जुमा यह से करते हैं, इजा, ठीक है, तिलका इजन, इजन का मतलब हो गया जब, इजा भी होता है और इजन भी होता है, ठीक है, तो ये तो इसका तर्जुमा तो जब से कर दिया। कर्रतुन खासिरतुन, कर्रतुन का मतलब क्या होता है, कर्रतुन का मतलब लौटना, ठीक है। आपने शायद सुना होगा कि जो बॉल होती है उसको अरबी जुबान में कुर्रा कहते हैं, ठीक है, कुर्रा, जैसे फुटबॉल है तो उसको कुर्रतुल कदम कहते हैं, कुर्रतुल कदम। तो बॉल को अरबी जुबान में कुर्रा क्यों कहा जाता है, कुर्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉल जो है ना वो इस किस्म का ज्योमेट्रिकल शेप होता है, या बॉल के जो शेप होता है वो ऐसी शेप होती है कि उसमें अगर आप एक पॉइंट से उसके गिर्द एक दायरा खींचना शुरू करें ना, एक लाइन खींचना शुरू करें, तो वो लाइन जहां से शुरू हुई होगी ना वहीं पर लौट के वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो बॉल को बॉल कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो एक गोल चीज होती है, एक लौट जाने वाली चीज होती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो लफ्ज है ना कर्रतुन खासिरा, तो इसका मतलब भी वही वही बेसिस है इसकी, कर्रा या कुर्रू, ठीक है, कर्रा या कुर्रू का मतलब लौटना, ठीक है। तो कर्रतुन का मतलब लौटना ही से करेंगे, यानी ये लौटना खासिरतुन, खासिरतुन का मतलब खसारे वाला, यानी ये जो लौटना होगा ना, कहते हैं कि ये जो लौटना होगा तो ये तो बड़ा खसारे वाला लौटना होगा, ठीक है, कि अगर हम कयामत के दिन अपने असल हालत में लौटा दिए गए, यानी दोबारा से जिंदा कर दिए गए, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर हमारे लिए। कुर्रा अर्ज, ठीक है, जैसे जमीन का कुर्रा, बिकॉज जमीन भी एक तरह की बॉल ही है, अगरचे के बिल्कुल राउंड नहीं है, लेकिन इलेप्टिकल भी वो सरफेस ऐसी होती है, एक जगह से शुरू करें तो फिर वहीं पर आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। फ्लैट सरफेस में ऐसा नहीं होगा कि आपने एक जगह से शुरू किया तो आप वापस उस उधर ही आ गए, क्योंकि फ्लैट सरफेस में आप एक पॉइंट से शुरू करेंगे तो इवेंचुअली वो फ्लैट सरफेस खत्म हो जाएगी और फिर आप आगे गिर जाएंगे, ठीक है, यानी आप मजीद आगे नहीं जा सकते, लेकिन बॉल में ऐसा नहीं होता, इसी वजह से लफ्ज कुर्रा इस्तेमाल होता है लौटने का। तो कालू तिल का इज़न कर रहा तुम खास ना, तो ये लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा यानी खसारे वाला लौटना होगा। फइन्नमा हिया जजरतुन वाहिदतुन, अब अल्लाह ताला फिर से दो बातें कयामत के बारे में फरमा रहे हैं कि फा इन नमा, फा का तर्जुमा तो हो गया सो, और इन नमा का तर्जुमा यकीनन, वैसे इसका तर्जुमा करते हैं सिवाय इसके नहीं, यानी जरूर बिल जरूर यकीनन इन नमा सिवाय इसके नहीं, यानी दिस इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, इन नमा का ये तर्जुमा होता है, दिस इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, इन नमा का तर्जुमा, इन्नमा का ये तर्जुमा होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही। हिया जजरतुन वाहिदतुन, हिया ये वो के माने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रोनाउन है जिस जो के मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हुआ मुजक्कर के लिए, तो हिया मोनस, वो हिया का मतलब वो। जजरतुन, जजर कहते हैं डांटने को, डांट को, ठीक है, यानी बड़े जोर से झड़की दी जाती है ना किसी को, तो उसको डांट कहते हैं, तो जजर का मतलब होता है डांट, और जजरतन उसी डांट का जो है वो मोनस का सीगा है। इन और मा दो लफ्ज नहीं है, हैं तो ये दो लफ्ज, लेकिन इनको जोड़ करके जब पढ़ा जाता है ना तो उसका ये मतलब निकलता है, ठीक है, सिवाय इसके नहीं, तो ये एक तरह से एक ही लफ्ज फिर गर्दाना जाता है, इन नमा, ओके, जो कि दरअसल दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो जजरतुन डांट हो गया और वाहिदतुन का मतलब एक, तो ये सिर्फ एक डांट ही थी। ठीक है, ये जो कयामत का मामला सारा का सारा शुरू हुआ ना, ये नफ़खे उला और नफ़खे सानिया, ये क्या है, ये सिर्फ एक डांट ही तो है, एक आवाज ही तो है, ऐसी जबरदस्त आवाज है, ऐसी जबरदस्त डांट है कि इस डांट की वजह से जो है वो पूरा निजाम जो है वो उलट पुलट हो गया। और फिर एक और डांट पड़ी, पूरा निजाम जो है वो फिर से इस्टेब्लिश हो गया, और क्या हुआ, फ़ाइज़ा हुम बिस्साहिरा। ठीक है, कि ये जो डांट पड़ी दूसरी वाली डांट नफ़खे सानिया, इससे क्या हुआ कि ये सारे के सारे मैदान में आ गए। साहिरा तुम कहते हैं मैदान को, ठीक है, और ये जो फ़ाइज़ा हुम है तो फा का तर्जुमा सो, यानी दूसरी डांट पड़ी और उसके बाद क्या हुआ, सो देन, THEN देन, एक्चुअली ये देन के माने में यहां पर ये जो फा है, ओके, देन इजा, ये जो इजा है ना, ये इजा एक खास किस्म का इजा है, इसका तर्जुमा जब से नहीं करेंगे बल्कि इस इजा का तर्जुमा करेंगे एकदम से, अचानक से। ठीक है, एकदम और अचानक, ठीक है, ऐसे तर्जुमा क्यों करेंगे, क्योंकि इस इजा के बाद हुम आ रहा है, और हुम जो है वो एक इसम है, नाउन है, अगरचे के नाउन का प्रोनाउन है लेकिन प्रोनाउन भी तो नाउन ही होता है ना, तो जो इजा किसी नाउन से पहले आता है ना, तो उस इजा का तर्जुमा एकदम अचानक इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, ऐसे करते हैं इसका तर्जुमा। तो जो दूसरी डांट पड़ेगी उसके बाद बहुत तेजी से जो है ना वो सारे के सारे इंसान उठेंगे और सारे के सारे एक मैदान में जमा हो जाएंगे, उस मैदान को कहा साहिरतुन। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस होगी जिसके अंदर के सबको जमा कर दिया जाएगा या सब खुद ही जमा हो जाएंगे। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया शुरू कर दिया। ठीक है, जो कि फिरौन और मूसा वगैरह, मूसा अलैहिस्सलाम भी होती है, तो अल्लाह ताला फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं, हल अता का हदीस मूसा, क्या पहुंची है तुझको मूसा की बात। तो हल इस्तेफाम के लिए यानी सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तर्जुमा इसका क्या से करेंगे, अता का मतलब होता है वो आया, अता, और का ये प्रोनाउन है जो कि अता के फेल का मफूल बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अता का वो आया तेरे पास, क्या आया तेरे पास, हदीस मूसा, मूसा की बात। हदीस कहते हैं बात को, तज़किरे को, जिक्र को। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी या मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा, हदीसों मुजाफ है और मूसा का लफ्ज यहां पर मुजाफ इलैही ही बन रहा है, हदीस मूसा, मूसा की बात, यानी क्या तुझको पहुंची मूसा की बात। इज नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुकद्दसी तोआ, जब पुकारा उसको उसके रब ने तोआ की मुकद्दस वादी में। ठीक है, तोआ की मुकद्दस वादी में, इसका तर्जुमा जब नादा, नादा युनादी, मुनादियतन, इसका मतलब होता है पुकारना। ठीक है, मुनादी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो निदा देना जिसको हम कहते हैं, तो नादा का मतलब उसने पुकारा, तो नादाहू उसने पुकारा उसको, अच्छा किसने पुकारा उसको, रब्बुहू उसके रब ने। ठीक है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को उनके रब ने यानी अल्लाह ताला ने पुकारा, कहाँ पुकारा, वादिल मुकद्दसी तुआ, वाद का मतलब तो वादी ही होता है, उर्दू में भी हम लफ्ज वादी इस्तेमाल करते हैं, अल मुकद्दस यानी तकदीस वाली, ब्लेसेड, कद्दसा युकद्दिसु तकदीसन फहुआ मुकद्दिसुन। ठीक है, ये बाबे सरफा युसरिफु से ही है, कद्दसा युकद्दिसु तकदीसन फहुआ मुकद्दिसुन, व कुद्दिसा युकद्दिसु तकदीसन फहुआ मुकद्दसुन। तो मुकद्दसुन क्या है, इसे मफूल का सीगा है, तकदीस का इसे मफूल मुकद्दस, यानी जिसको यानी जो ब्लेसड है, ठीक है ना, जिसमें बरकतें हैं, और वो उस वादी का नाम क्या है, तुआ। ठीक है, वादी तुआ, ये अल्लाह ताला ने इसका नाम रखा है। ठीक है, वादी सीना भी इसको कहते हैं और वादी तुआ भी इसका कुरानी नाम है। तो वादी तुआ में, यहाँ पे बा जो लफ्ज है ना, ये हर्फ जर है, और यहाँ पे यानी बा का तर्जुमा वैसे तो साथ से करते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह में जो बा होता है तो उसका तर्जुमा होता है अल्लाह के नाम के साथ, लेकिन यहाँ पर जो बा है यानी इस बा का तर्जुमा करेंगे वादी में या वादी के बराबर में। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम या तो उस वादी के अंदर मौजूद थे या उस, यानी होता है ना बिसाइड्स या बाय बाय द वैली। ठीक है, तो बा का मतलब यहाँ पर यही है, बराबर में या उसके अंदर। ठीक है, इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा। अल्लाह ताला ने जो पुकारा मूसा अलैहि सलाम को तो क्या कहा, इज़हब इला फिरौना, जाओ फिरौन के पास, इन्नहु तगा, वो बागी तागी हुआ हुआ है, यानी उसने बगावत कर दी है। किसके खिलाफ बगावत करी थी, अल्लाह के खिलाफ बगावत करी थी। ठीक है, तो इज़हब, इज़हब का मतलब होता है तू जा, ज़हबा यज़हबू, अल अम्रु मिन्हु इज़हब, इज़हब का मतलब तू जा, इला फिरौना फिरौन की तरफ या फिरौन के पास। साहिरा का लफ्ज जादू से नहीं निकला, नहीं, जादू के लिए लफ्ज सहर होता है, सहर, मोटी हा, वो बड़ी वाली हा, हलवे वाली हा, ये दो चश्मी हा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि फिरौन की तरफ जाओ, इन्नहु तगा, बेशक वो तगा, तगा का मतलब उसने तुगयानी की हुई है, तुगयानी, समंदर में तुगयानी कब आती है, जब समंदर बगावत कर देता है कि भाई मुझे जितना एरिया असाइन किया है ना तो मैं उससे बागी हो गया हूं, अब मेरी लहरें जो है वो इतनी ऊंची होंगी कि वो उस एरिया से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, कभी सैलाब भी आ जाता है मैदानी इलाकों में समंदर की तुगयानी की वजह से, कभी होता है कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें यानी होना शुरू हो, आपने शायद, आपके पास भी वो वीडियो पहुंची हो कि एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर है समंदर के अंदर, और यानी उस इतना बड़ा टैंकर है कि हम उसको देख करके ही हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा जी ये जहाज है, लेकिन जो समंदर में तुगयानी आई हुई है ना उसमें ऐसा लग रहा है वो ऑयल टैंकर कि जैसे छोटी सी कोई कश्ती होती है कि अब डूबी के तब डूबी, राइट, इतनी बड़ी बड़ी उसके ऊपर वेव्स उड़ रही हैं कि टैंकर तो लगता है कि बस अभी डूबने वाला है। तो जब समुद्र में तुगयानी आती है ना तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसी कैसा हाल होता है वहां पर, जिसने सफर किया है वही जानता है। फकुल हल्लका इला अं तज़क्का, फिर कह दीजिए तेरा जी चाहता है कि तू सवर जाए, यानी मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला हुक्म कह रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं कि वो जा करके फिरौन से कहें, तो फकुल फिर कह, यानी फिरौन से कह, हल्लका, क्या तेरे लिए, हल का मतलब, हल का मतलब भी जो है वो क्या से करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर हल आया था ना आयत नंबर 15 में, तो इस्तेफाम के लिए होता है, तो यहाँ पर भी वही हल है, हल का मतलब क्या। लका, लका में लाम जो है वो हर्फ जर है और काफ जमीर है जो कि मुखातब की तरफ पॉइंट करती है, तो यहाँ पर मुखातब कौन है, मूसा अलैहि सलाम तो मुखातिब हैं और मुखातब कौन है, फिरौन। ठीक है, यानी मूसा अलैहि सलाम मुखातिब हैं यानी मुतकल्लिम जिसको कहते हैं कलाम करने वाले, और मुखातब जो है वो फिरौन है, तो का की जमीर तो मुखातब की तरफ पॉइंट करती है ना, तो लका का मतलब तेरे लिए, हल लका, क्या तेरे लिए, मतलब यहां पर यह है कि क्या तेरा कुछ इरादा है, क्या तेरे लिए हिदायत लिखी है, इस तरह की बात करना कि क्या क्या तू चाहता है। ठीक है, यानी आम जुबान में कहेंगे क्या तू चाहता है, हल लका। इला अन तज़क्का, इला का तर्जुमा तरफ, टूवर्ड्स। ठीक है, अन तज़क्का, कह तू मुजक्की हो जाए, तू पाक साफ हो जाए। ठीक है, तज़क्का ये सूरह है अबसा व तवल्ला के अंदर भी हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो तज़क्का का मतलब कि तू संवर जाए, असल में ये क्या था, तज़क्कया या तज़क्कयू। ठीक है, जो सर्फ वाले हैं वो सुन लें और नोट भी कर लें तो अच्छा है कि ये बाबे तकबुल से है, तकबला या तकबलू तकबुलन, तज़क्कया या तज़क्कयू तज़क्कुयन। ठीक है, ये बाबे तकबुल से है। यतजक्कयु था ये असल में, ये जो लफ्ज था ना, ये था असल में ततजक्कयु, ततजक्कयु। तालील करने के बाद और कवायद लगाने के बाद इसका या जो है वो अलिफ मकसूरा से तब्दील हो गया, और जो शुरू में ता था उस ता को गिरा दिया, डिलीट कर दिया, तो ये क्या बन गया, तजक्का बन गया। ठीक है, वरना ये असल में ततजक्कयु ये था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जाकर के उससे पूछो कि क्या तुम्हारा इरादा है हिदायत पा जाने का, अपने आप को पाक कर लेने का। वह अहदिया का इला रब्बी का फतख्शा, और मैं राह बतलाऊं तुझको तेरे रब की तरफ, फिर तू डर जाए। ठीक है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरी बात क्या हुक्म फरमाई फिरौन से कहने के लिए, कि मैं तुझे हिदायत की बात बताऊंगा, तेरे रब की तरफ जाने का रास्ता, उसकी हिदायत की बात तुझे बताऊंगा, और तू डर जाए, और तू डर यानी तू उस बात को सुनकर के डर जाए। क्या ये, हम कहते हैं ना कि एक बहुत ही ज्यादा सरकश किस्म का इंसान हो ना, तो उससे बात करने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो उससे इस तरह से बात करना है कि यानी क्या तेरी, जैसे उर्दू जुबान में इस तरह कहें, क्या तेरी तकदीर में हिदायत लिखी भी है। ठीक है, यानी उसको क्या पता कि उसकी तकदीर में हिदायत लिखी है कि नहीं लिखी है, लेकिन हम बात इस तरीके से कर सकते हैं उससे। ठीक है, ये क्या तेरा कुछ इरादा है हिदायत पाने का, क्या तेरा कुछ इरादा है डर जाने का। ठीक है, तो इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो फिरौन से कलाम कर रहे हैं। तो लफ्जी तर्जुमा, वाओ का तर्जुमा तो और से कर देंगे कि एंड अहदिया, ये क्या है कि हदा यहदी, हदा यहदी हिदायतन। ठीक है, अब लफ्ज है यहदी, यहदी हदा यहदियु, असल में यहदियु था ये, असल में यहदियु को गर्दान में चलाएं तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा क्या बनता है, अहदियु। ठीक है, कि मैं राह बतलाता हूं, अहदियु। ठीक है, तो ये असल में है अहदियु, लेकिन ये अहदियु से अहदिया कैसे बन गया, अहदियु से अहदिया कैसे बन गया, ये अन की वजह से बना है। पिछली आयत के अंदर अन है ना, इस अन से जो है वो हालत रफा हालत नसब में तब्दील हो जाती है, तो हालत रफा थी अहदियु, अन की वजह से ये अहदिया बन गई हालत नसब। ठीक है, तो मतलब यह है कि मैं हिदायत की बात बतलाऊं तुझको, का की जमीर तुझ की तरफ पॉइंट कर रही है, तो मैं हिदायत की बात बतलाऊं तुझको, आह दिया का। कौन सी वाली हिदायत, किसकी तरफ हिदायत, दुनिया में ज्यादा माल कमाने की ताकि तू जो है वो ज्यादा अमीर हो जाए, या मैं तुझे इस बात की हिदायत की बात बतलाऊं कि तेरी सल्तनत और ज्यादा वसी हो जाए, जितनी अभी है उससे भी ज्यादा, नहीं बल्कि इला रब्बी का, तेरे रब की तरफ पहुंचने वाली जो राह है उसके बारे में तुझे बताऊं। ठीक है, तो यही फरमा रहे हैं कि वह अहदिया का इला रब्बी का, तेरे रब की तरफ जो पहुंचने वाली राह है उसकी तरफ मैं तुझे बताऊं, फतख्शा फिर तू डर जाए, खशिया यख्शा। ठीक है, यख्शा का मतलब होता है वो डर जाए, और उसको गर्दान में चलाएं तो तख्शा वाहिद मोहनस गायब का सीगा, बल्कि ये जो है तख्शा जो है वो वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, तख्शा मतलब तू डर जाए। ठीक है, वाहदिया का इला रब्बी का फतख्शा, और राह बताऊं तुझको तेरे रब की तरफ, फिर तू डर जाए। फअराहुल आयतल कुबरा, फिर दिखलाया उसने उसको बड़ी निशानी। ठीक है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दो बातें जब कही फिरौन को, उसके बाद फिर फिरौन ने उनसे मुतालबा किया कि तुम अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कह रहे हो, तो पैगंबर तो निशानियां लेकर के आते हैं, हैं? वो तो मौजे लेकर के आते हैं, तो क्या तुम्हारे पास भी कोई मौजा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मेरे पास भी मौजा है, तो वो मौजे जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फिरौन को दिखाए। ठीक है, जो कि दो थे, यदे बैजा और असा वाला मौजजा, तो उसी की बात हो रही है। راہل آیت الکبرا، فا کا ترجمہ پھر، ارا اس نے دکھایا، ارا یوری کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، تو ارا کا مطلب اس نے دکھایا، ہو یعنی اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا فرعون کو، اراہو اس نے دکھایا اس کو، الآیت الکبرا، آیت کہتے ہیں نشانی کو، ٹھیک ہے سب کو ہی پتہ ہے، اور کبرا سب سے بڑی، ٹھیک ہے یعنی ایک بڑی نشانی جو دوسری نشانیوں کے مقابلے میں بڑی نشانی تھی، ٹھیک ہے، اسم تفضیل مؤنس کا صیغہ، کبورا یکبرو کبرن فہوا کبیرن، کبورا یکبرو کبرن فہوا کبیرن، اور اس کا اسم تبدیل کیا تھا، الافعل التفضیل منہ اکبرو والمؤنس منہ کبرا، ٹھیک ہے، تو کبرا اسم تبدیل واحد مؤنس کا صیغہ ہے. فکذب وعصا، لیکن فرعون نے کیا کیا، اس نے جھٹلا دیا اس کو اور نافرمانی کری. تو کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، کذبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، اور اس کذبہ لفظ کو جب آپ باب تفعیل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کذبہ بن جاتا ہے، تو کذبہ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، اب جھوٹ بولنا نہیں ہوتا اس کا مطلب، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کو جھٹلانا، یعنی یہ کہنا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اردو میں جھٹلانا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا، کذبہ. وعصا، عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، جیسے گناہگار کو کیا کہتے ہیں، آسی، نافرمانی کرنے والا، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، یعنی گناہگار کو اپنی کملی میں چھپا لے، نبی علیہ السلام کی شان میں نعت ہے. تو عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، تو اس نے نافرمانی کی. ثم ادبرا یسعا، ثم کا مطلب اس کے بعد، یعنی پھر اس نے کیا کیا، ادبرا اپنی پیٹھ پھیری، دبر کہتے ہیں بیک کو، بلکہ جو انسان کا بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، جو کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ ہپس جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دبر کہتے ہیں. تو ادبرا کا مطلب ہوتا ہے کہ پیٹھ پھیرنا، یعنی اپنا منہ پھیر لینا، اور جس سے بات ہو رہی تھی اس کی طرف سے، یعنی اس کی طرف منہ پھیر کر کے، اس کی طرف سے منہ پھیر کر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، تو ادبرا کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس نے اپنی پیٹھ پھیری، یسعا، اور تیزی سے وہاں سے چلا. سعا یسعا، سعا کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے چلنا، سعی کرنا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سعا کا مطلب وہ، یعنی یسعا، یہ اس کا مضارع کا صیغہ ہے، تو یسعا کا مطلب کہ وہ تیزی سے پھر وہاں سے چلا، ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے نا وہ پھر اپنے لوگوں کی طرف گیا، اپنے درباریوں کی طرف یا اپنے عوام کی طرف، اور کیا کیا اس نے، فحشرا، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، یعنی منادی کری، اس زمانے میں اناؤنسمنٹ کرنے والوں کو سڑکوں پہ بھیجا جاتا تھا، وہ جو ہے وہ ڈرمز بجا بجا کر لوگوں کو کہتے تھے کہ بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، فلانے میدان میں فلانے وقت میں آ کر کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، تو اس کو کہتے تھے لوگوں کو جمع کرنا. تو اس نے اسی طریقے سے اناؤنسمنٹ کروائی کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں حشرا. جیسے اللہ تعالی جو کہ اصل بادشاہ ہیں، وہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، تو اس وجہ سے قیامت کے دن کو بھی یوم حشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حشرا کا مطلب اس نے جمع کیا. فنادا، پھر اس نے لوگوں کو پکارا، ٹھیک ہے، یعنی پکار کر کے باقاعدہ تقریر کری لوگوں کے سامنے. فقالا انا ربکم الاعلی، بس اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، الہ بھی نہیں کہا، رب کہا کہ میں پالنے والا ہوں. تو فا کا مطلب پھر، قالا اس نے کہا، انا میں، ربکم تم سب کا رب، ٹھیک ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور کم کی ضمیر جب لگ گئی تو تم سب کا ربکم، ٹھیک ہے، ضمیر کا ٹیبل ابھی آپ لوگوں کو پڑھایا تو نہیں ہے، کا کما کم، है, का तो पीछे भी आया ना, हल्लका, उसके अंदर भी का आया था, वाहिद मुदक्कर हाजिर, तो का को जमा में ले जाए तो कुम बन जाता है, तो रब्बुकुम तुम सब का रब। आला, आला ये क्या है, अला या अली का मतलब होता है ऊंचा, और आला ये इस्म तब्दील का सीगा है, यानी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा ऊंचा, ठीक है, यानी जितने भी दूसरे रब होंगे या जितने भी दूसरे बनाने वाले होंगे, पालने वाले होंगे ना, मैं उन सबसे ऊंचा पालने वाला हूं, ये उसने दावा किया लोगों के सामने। अलयू, अकबरू के बदन पर ये अलयू है, इसम तब्दील का सीगा, ज्यादा ऊंचा। फअखदहुल्लाहु नकालल आखिरते वल ऊला, फिर पकड़ा उसको अल्लाह ने सजा में आखिरत की और दुनिया की। फा, ये फा फा करके पूरी कहानी चल रही है, ठीक है, तो फा का मतलब यहां पर भी देन या फिर। ओके, अखदा, अखदा का मतलब उसने पकड़ा, ठीक है, अखदा या अखदु, अखदन, अखदा का मतलब उसने पकड़ा। हु की जमीर फिरौन की तरफ पॉइंट कर रही है, तो उसने पकड़ा उसको, यानी अल्लाह ने पकड़ा फिरौन को, और अल्लाह का जो इसम है ये अखदा के फेल के बाद बतौर फाइल के यहां पर मौजूद भी है, यानी अल्लाह ताला ने पकड़ा उसको। नकाला, नकाला का मतलब उसने सजा दी, नकाल कहते हैं सजा को। अल आखिरा, आखिरी वाली सजा, आखिरी वाली सजा कब होगी, आखिरत के दिन। आखिरत के दिन को आखिरत कहते क्यों है, क्योंकि वो आखिर में आएगी, ठीक है, आखिर में, बिल्कुल एंड में, तो वो आखिरी सजा का दिन होगा काफिरों के लिए, और मोमिनों के लिए आखिरी जजा का दिन होगा, इसी वजह से उसको आखिरत कहते हैं। तो नकालल आखिरती, आखिरत की सजा, वल ऊला, और ऊला यानी जो यानी बिगिनिंग होती है, ऊला स्टार्टिंग बिगिनिंग, ऊला की सजा, ठीक है, तो नकालल आखिरता वल ऊला, आखिरती वल ऊला, क्योंकि दुनिया की भी सजा दी अल्लाह ताला ने उसको, यानी उसको पानी में गर्क किया, और आखिरत की भी सजा दी। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, बेशक इसके अंदर है इबरत उसके लिए जो डरता है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक उसूल बयान फरमा दिया कि ये जितने कयामत, ये कुरान के अंदर अजाब के वाकयात हैं ना, इन वाकयात का असर किस पर होता है जो कि पहले से डरता है, तो फिर जो पहले से डरता है तो उसको फायदा क्या है इन वाकयात का, तो उसको फायदा ये होता है कि उसका डर जो है वो और बढ़ जाता है, उसकी तौफीक जो है वो और बढ़ जाती है अमाल करने की और गुनाहों से बचने की। जो काफिर होता है तो उसने वैसे ही हंस के गुजर जाना होता है इन चीजों को, और काफिर को भी फायदा होता है, क्या फायदा होता है काफिर को, फायदा ये होता है कि उसका उसके ऊपर जो हुज्जत होती है ना, सजा की हुज्जत, वो और बढ़ जाती है, और वो सजा के लिए का मुस्तहिक हो जाता है इन वाकयात से, तो ये उसका नेगेटिव फायदा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना, बेशक, फी में, जालिका, ये भी इसमें इशारा हो गया, इसमें इशारा बईद, वाहिद मुदक्कर के लिए जो इसमें इशारा बईद इस्तेमाल होता है वो जालिका होता है। ला, लाम ताकीद, इबरत, इबरत का मतलब होता है यानी जिससे कि सबक हासिल किया जाए जिस चीज से, तो उसको इबरत कहते हैं उर्दू में भी। ली मन, ली हर्फ जर है जिसका तर्जुमा लिए से करते हैं, और मन का मतलब जो, यख्शा वो डरता है, ठीक है, या वो डरता है, तो खशिया यख्शा, ठीक है, नाकिस लफ्ज है खशिया, और इसका जो अरे होता है वो यख्शा, असल में था यख्शयु, खशिया यख्शयु, लेकिन या आखिर में जब आता है तो चूंकि वो हर्फ इल्लत है तो उस हर्फ इल्लत को अलिफ मकसूरा से तब्दील कर दिया जाता है उस या को, तो वो यख्शा बन जाता है, अलिफ से तब्दील करने जाते हैं, तो वो यक्षा बन जाता है, वरना ये यक्षयु था। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पर बाकायदा एक रुकू खत्म हो गया है, ये पहली सूरत صورت ہے نا جس کے اندر ایک سے زیادہ رکوع ہیں حدیث مبارک کے. تو رکوع ختم ہو گیا, ٹائم بھی ختم ہو گیا, تو باقی ایک رکوع جو ہے ان شاء اللہ ہم اگلی کلاس میں کور کر لیں گے. کسی کو کوئی سوال ہے اس ترجمے کے متعلق؟ یا ان جنرل ٹھیک, اگر سوال نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.